نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اسلام اے ٹو زی میں آج عبادات کا ٹاپک شروع کریں گے. یاد ہے پہلے دن کی شیٹ؟ سب سے اوپر اسلام، اسلام کے دو حصے حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کی پھر دو آگے چیزیں، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو عبادات. اور عبادت کے دو حصے، ایک اخلاقیات اور دوسرے معاملات. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک اس حصے کی جو سیڑھیاں طے کی ہیں اللہ کے حکم سے وہ عقیدے کی ہیں. آج ہم انشاءاللہ حقوق اللہ کا دوسرا حصہ لکھیے، اور جو میں کہہ رہی ہوں مجھے کہتے ہوئے بھی، بولتے ہوئے بھی، اور آپ کو سنتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کن کے رائٹس کی بات ہے. آج کے دور میں ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، ایٹموسفیئر رائٹس، اینیمل رائٹس، کتنے رائٹس کے دھوم مچ چکے ہوئے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے رائٹ، گاڈز رائٹ ہیں ہی نہیں سرے سے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق دیے بغیر ہم بندوں کے حق نہیں دے سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک آج بہت اہم حصہ ہم پڑھنے والے ہیں عبادات کا. اس کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے نا. اس پورے ویک میں انشاءاللہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر لفظ عبادت کو سمجھنا ہو تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم شروع سے سیکھتے آئے، اور دن میں کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، اور اگر شعور سے پڑھا ہوتا آج ایسی امت نہ ہوتی. یہ دو جملوں کا جواب ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق نہ سمجھا، نہ اللہ کی عبادت کو اس طرح سے سنجیدگی سے لیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا عمل کون سا قبول ہے جو حقیقت میں صرف اسی کے لیے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے پچھلے حصے میں، اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو جوڑنا چاہ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ آج کی ورک شیٹ آپ شروع کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے توحید کی تین قسمیں پڑھی تھیں نا، ذرا دہرائیں آپ سب. توحید کی تین قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ شاباش، توحید ربوبیت پڑھی تھی، وہ بات واضح ہو گئی، اللہ رب ہے. دوسری قسم توحید الوہیت پڑھی تھی. توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے توحید الوہیت ہی کی ایکسٹینشن آج ہم پڑھنے لگے ہیں. توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے. بات واضح؟ یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق کہ اللہ کے لیے توحید الوہیت کا عقیدہ رکھا جائے، اسی کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. لکھ لیں اسی پیج پہ، بے شک لکھ لیں، اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے، توحید الوہیت کو ہی توحید عبادت کہتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے توحید کی تین اقسام میں سے توحید ربوبیت کی یہاں 15 اقسام نوٹ کی تھی کہ رب ہونے سے کیا مراد ہے، آج ہم پوری جو بحث پڑھیں گے الہ ہونے سے کیا مراد ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا، یہ ہے سمندر جس کو کوزے میں نہیں، یہ چھوٹی سی عقل، چھوٹی سی ٹوکری ہے، ٹوپی ہے ہمارے سر پہ اللہ نے ایک ڈالی ہوئی، جس کو اللہ کے الہ ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا اس کی عبادت رسمی نہیں رہے گی، رواجی نہیں رہے گی، بس عبادت برائے عبادت نہیں رہے گی. توحید الوہیت کو ہی توحید عبادت کہتے ہیں، یعنی عبادت اور بندگی کا مستحق فقط اللہ ہے. اگر اس جملے پہ اگر آج میں اور آپ اپنے لائف سٹائل کو ہی صرف دیکھ لیں، اپنے سوشل سیٹ اپ کو دیکھ لیں، اپنے فیملی سیٹ اپ کو دیکھ لیں، اپنے معاشروں میں کمانے کھانے کے ڈھنگوں کو دیکھ لیں، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ اور طریقوں کو دیکھ لیں، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں، ہم پریشان ہو جائیں کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہم واقعی وہ مسلمان ہیں جن کو ہوا سماکم المسلمین کا خطاب ملا تھا؟ کیا ہمارے پاس وہی اسلام ہے آج کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ بلیو می، آج ساری کمیز پہ ہے، اور میں اس میں ذمہ دار دین کی دعوت دینے والوں और दावत को आगे पहुंचाने वालों को भी लूंगी। देखिए, दो लोग होते हैं, एक होता है उस्ताद। उस्ताद बैठता है किसी दरसगाह में, मदरसा में, और वो सिखाता है। जैसे आजकल आप और मैं इस्लाम ए टू जी को समझने की कोशिश में, इसमें तो हर मौजू आता है। इसमें तो स्टूडेंट्स का हक बनता है कि उसको एक एक चीज़ दी जाए। लेकिन मैं बात करूँगी पब्लिक दरसों की, वो लोग जो सिर्फ टेस्ट चेंज करने को, या चले डू समथिंग सही, कुछ तो कीजिए, कुछ होने से कुछ ना होना, ना होने से होना तो बेहतर है। ऐसे लोगों को कभी भी अगला टॉपिक नहीं देना चाहिए। यानी मैंने पिछले साल, मेरा है 5-6 माह पहले की याद है मुझे कोई बात, मैंने एक दर्स में ये बात कही थी कि अगर आज से, फ्रॉम टुडे, सारे दीनी मुबल्लिग, सारे टीचर्स, स्कॉलर, स्पीकर, जो भी आप उनके नाम रखें, इस बात पे लग जाएं हमने किसी दूसरे मौजू पे बात नहीं करनी, अनलेस हमारे इर्द गिर्द के लोग या हमारे ऑडियंस को अकीदा और इबादत ना समझ आ जाए, अल्लाह का हक समझ ना आ जाए। ये इधर उधर के इश्यूज़ में उलझा कर लोगों की अभी तक इबादत, क्या छोड़ दीजिए, तौहीद ही ठीक नहीं है। कितनों को शुरूते ला इलाह आती थी, कितनों को तौहीद की ये अकसाम पता थी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम सारे अपने आप को इस सिरे से रीस्केड्यूल करें। हम सबको भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा नेमत अब हमारे पास है और सबसे बड़ा हक हमारा है। तो आज की वर्कशीट का पहला पेज, पहला सवाल आप देख लीजिए, इबादत किसे कहते हैं, इबादत क्या होती हैं। अगर आप इस चीज़ को सामने रख लें तो इबादत जो है हकीकत में अल्लाह के इस हक को मानने का नाम है कि अल्लाह हमारा इलाह है, फ़क्त और फ़क्त उसी को, और वो हस्ती है जिसको मानना है, नंबर एक। अब जो दूसरे मैं लिखा रही हूँ, आपने इन ब्लॉक्स में लिखना है जो आपके सामने शीट्स में मौजूद हैं, इबादत अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने, कॉमा लगाइए, और इसकी मना की हुई चीज़ों से रुकने का नाम है। 3 सेकंड सोचिए मैंने क्या कहा आपको। और अगर इस पहचान को समझ गए ना, आपने समझ लिया है तारीफ को, तो अब इसकी रोशनी में कितने लोग आज मुआशरे में आबिद हैं और कितनी आबिदा हैं। हम इबादत गुजार किसको कहते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों पे अमल करे और अल्लाह के मना किए हुए को छोड़ दे? नहीं, हम तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वाले को इबादत गुजार कहते हैं, रोज़ों के पाबंद, सोमो सलात के पाबंद। यानी आज ये है वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से उम्मत भटकी थी। हर वक्त सोचती रहती हूँ आखिर वो कौन सा मोड़ था जहाँ से रॉन्ग एग्जिट लिया था। वो ये है, पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आज के मुसलमान जब से बिगड़ने शुरू हुए, बिगाड़ की पहली सूरत ये थी कि बेसिक्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए ना, वहाँ से हमारा रुख पलटा और हम साइड इश्यूज़ में खो गए। यहीं से उम्मत तफरक़ों में बटी, यहाँ से फ़िरके वजूद में आए, यहाँ से नस्बतें वजूद में आईं, यहाँ से मोहब्बतों और नफ़रतों का मरकज़ शख्सियात या इदारे या नाम या गिरोह या फ़िरके हो गए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, एक जगह फ़रिहीन भी आता है। हर बंदा अपने टुकड़े पे खुश फिर रहा है कि मेरे से बड़ा कौन होगा। तो याद रखिए, दीन की असल हकीकत भी यही है। इबादत एक बहुत जामे चीज़ है, इसमें तमाम ज़ाहरी और बातनी अकवाल और आमाल शामिल हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है और जिनसे राज़ी होता है। चलिए इसको ज़रा सा जज्ब करें तो फिर मैं अगली डायमेंशन पे जाऊँ। सब मिलकर बोले इतनी आवाज़ से कि ये कमरे में एक एक कोने में ये आपकी आवाज़ आ जाए, इबादत किसे कहते हैं? समझ आ रही है? तो इसी का फिर क्या नाम बन गया दूसरा? इतात, सबमिशन। इबादत इज़ इक्वल टू इतात। मैंने हमेशा सूरत फातिहा की तफसीर में या का नाबुदू में 3 मानी सिखाए हैं इबादत के, जिसमें एक परस्तिश और बंदगी के मानों में, और इसमें एक इतात है। ठीक है, चलिए अब सेकंड डायमेंशन ऑफ इबादत लिखिए। इबादत इन तमाम चीज़ों से बरात भी है। बरात किसको कहते हैं? शाबाश, बरातु मिन अल्लाही, सूरह तौबा की पहली आयत, बेजारी। तो मैं बेजारी भी बोल देती हूँ। इबादत इन तमाम चीज़ों से बेजारी भी है जो अल्लाह को नापसंद है और जिनसे वो राज़ी नहीं होता। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इबादत दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत का नाम है, और अल्लाह ताला की इताअत का तरीका ये है कि अल्लाह ने अम्बिया और मुरसलीन को जो अहकाम दिए हैं, इनकी ताबेदारी की जाए। चलिए क्या समझ आया? दिल नहीं कर आगे जाने का, वो तो इसमें आया ही नहीं जो हमने सोचा हुआ लफ्ज़ इबादत के साथ। एक ख़ास गेटअप, इबादत गुजार नहीं। पहली चीज़ क्या थी? जो करने को कहा वो करो और जिससे रुकने को कहा रुको। आज आप सब ने अपने पास घर में ये जो इबादत के मफहूम बता रही है ना, 10 दफ़ा ये दोनों जुमले लिख के अपने पास रखते जाइए, ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा बनेंगे। यानी ये इबादत आपने अपने हाथों से भी लिखना है, ये फिर दूसरी दफ़ा अपने दिल से लिखना है, फिर तीसरी दफ़ा गौर व फिक्र करना है, फिर उसको देख देख के लिखना है। यानी आपके 5 लिम्स जो है ना, इस लफ्ज़ को रट लें कि इबादत नाम है अल्लाह की इताअत, किस तरीके से जिसके करने का हुक्म दिया वो करना है, जिससे रुकने का रुकना है। और आज आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि सहाबा को क्यों नहीं कहना पड़ता था, यानी नबी सल्लम को क्यों नहीं कहना पड़ता था सहाबा से कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, फी सबीलिल्लाह निकलो, क्योंकि उनको इबादत का मानी समझ आ गया था, हमें नहीं आया। चलिए अब दूसरा जो मैंने कहा है तरीका, दूसरी किस्म, वो सब बोले इबादत क्या है? चलिए अब 3 सेकंड खुद सोचें, क्या मैं आबिदा हूँ? क्या मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जो अल्लाह को नहीं पसंद? और इसका ऑपोजिट भी सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी शीट में लिखा हुआ है, इबादत के कितने अरकान हैं? इबादत के 3 बुनियादी अरकान हैं। नंबर 1, कमाल अल हुब, अल्लाह ताला की कामिल मोहब्बत इबादत है। सूरत बकरा 165, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मुस्तकिल इबादत की हालत में होता है। ये जुमला लिख लें, शायद आपको कहीं काम आ जाए। देखिए, सारा दिन सारा वक्त में आप नमाज नहीं पढ़ सकते ना। आज फिर उन सारी चीज़ों को देखें जो हमारे माशरे के मिसकॉन्सेप्शंस हैं। जब हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, तो हम कहते हैं हाय सारा दिन नमाज़ पढ़ते रहें, फिर हर रोज़ ही रोज़ा रख ले। नहीं, कौन सी इबादत की कैफियत है जो हर वक्त कर सकते हैं? वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, मोहब्बत, जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहें आई लव माई अल्लाह, आई लव माई गॉड, आई लव माई क्रिएटर, आई लव अर रहमान, आई लव अल वदूद, तो आप इबादत में। अल्लाह ताला तो कहते हैं इनकी तो करवटों में भी अल्लाह की मोहब्बत है। ये रात को उठाती कौन सी मोहब्बत है? ततजाफ जुनूब अनिल मदाजी, ये कौन सी मोहब्बत है? और बिस्तरों से वो अपने दिल को लगाते नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। दूसरा रुकन है अल्लाह से कामिल उम्मीद, पूरी उम्मीदें अल्लाह से। बनी इसराइल 57, सारी उम्मीदों की डोरियाँ काटोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। आज सोचिए इस नाम पे फिर ये रुकन है आज उम्मत में। हमारा हाल तो वो शायर का है ना, क्या उसने कहा कि बुतों से तुझको उम्मीदी, अल्लाह से ना उम्मीदियाँ। हम तो अल्लाह के पास तब जाते हैं जब सारे छोड़ दें, हम कहते हैं अब सिर्फ अल्लाह ही मेरा सहारा है। तो अल्लाह आपका तब भी था जब सारे थे। ये जो जुमला हम आखिर में बोलते हैं ना, इसको पहले बोलिए, ये रुकन है इबादत का। तीसरी चीज़, अल्लाह का कामिल खौफ। बनी इसराइल 57, क्या पता चला कि अल्लाह का खौफ ये भी इबादत है। जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना, वो मुस्तकिल आबिद है। जो अल्लाह से पुर उम्मीद है ना, बस मेरे हालात ठीक हुए, बस ठीक है, ला तकना तुम्हें रहमतिल्ला, ठीक हो जाऊंगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये तंगी ख़त्म हो जाएगी, ये दुख बच्चे का ख़त्म हो जाएगा, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बस समझिए आप पूरी इबादत गुजार हैं। तो कमाल अल खुब, कमाल अल जुल, आजजी की भी इंतहा, मोहब्बत की भी इंतहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत की किस्में कितनी हैं? अहले इल्म के नज़दीक इबादत की 3 किस्में हैं। अब ये एक बांट है, जिसको आप बांटेंगे तो आपके लिए इबादत को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले है कल्बी इबादत, कल्ब की इबादत, वर्शिप बाय हार्ट। इससे मुराद वो इबादत जिसका ताल्लुक बराह रास दिल से होता है। जैसे मसलन, आप ज़रा सोचें मैं क्या बोलूँगी, यानी दिल के साथ कौन सी इबादत होती है? नंबर 1, ईमान, अल्लाह पर ईमान आपकी दिल की इबादत है। यकीन, मोहब्बत, खौफ, खशियत, रिजा, रग़बत, तौबा, इनाबत, तवक्कुल, शुक्र, सब्र। आप समझ आ रहे हैं ये डोरियाँ कैसे जुड़ी हुई हैं आपस में? तो इन लफ्ज़ों से मेरे ज़हन में दरख्त की तस्वीर आई है, और दरख्त के नीचे जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों में से ऐसे लाइनें खिंचती हुई तने तक जा रही हैं, पानी भी तो जड़ों के रास्ते ऊपर जाता है ना, नमकियात, मिनरल, सब कुछ। तो इस तरह दिल से मोहब्बत, यकीन, खौफ, खशियत, रजा, रग़बत, तौबा, इनाबत का पानी जड़ों के रास्ते तनों में जाता है तो इबादत अच्छी हो जाती है। फिर क्यों ना वो नमाज हो जिसको कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज में पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि खशियत के मारे हंडिया खोल रही है। और फिर क्यों ना कुमु लिल्लाही कानितीन। और यहाँ से अपनी और अपने बच्चों की नमाजों को भी हम देखें, क्या आज हमारी नमाजों का हाल ये खोखला तना क्यों है? किसी दरख्त का एक स्टैचू बना के रख दें तो क्या वो हरा होगा? असली जड़ें हों नीचे और नकली पौधा हो ऊपर तो टिकेगा ही नहीं। असली जड़ों ने एकदम नीचे से तना निकालना है, एक एक आउट करेगा, आपका नकली तना उधर से हट जाएगा। लेकिन पौधा असली हो, नीचे से जाके जड़ें काट दें, 1-2 महीने में सारा दरख्त नीचे गिर जाएगा। आज ये हुआ है, अल्लाह करे हमें ये बात समझ आ जाए। दूसरी किस्म है ज़ुबान की इबादत। इससे मुराद इबादत के वो सारे काम हैं जो इंसान अपनी ज़ुबान के ज़रिए से अंजाम देता है। आप ज़रा सा जहन पे बोझ डालें, ज़ुबान से क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ज़िक्र, दुआ, खैर की दावत, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, और कुल्लू मारूफ इन सदका, हर अच्छी बात सदका है। तो ज़ुबान से इबादत के ये काम है। तीसरा है आज़ा की इबादत। पहली क्या थी? इबादत कल्बी, दूसरी थी इबादत लिसानी, और तीसरी थी इबादत बिल जवारह, लेम्स के साथ। इससे मुराद फिर वो सारे ही काम है जो इंसान अपने अज़ा के ज़रिए अंजाम देता है। ज़्यादातर इबादत का ताल्लुक अज़ा और जवारह से है। मसलन वो इबादत जिन्हें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है, अल्लाह के और नबी सल्लम के अकवाल और अफ़ाल से हमें इनकी अदायगी का जो सही पता चला है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, कुर्बानी, नज़र, सदका, एतिकाफ, जिहाद, इसी तरह इस्लामी सरहदों की पहरेदारी, सिला रहमी, ये सारी इबादत है ना। कह लीजिए कि नेकी के काम और वो सारे काम जिसका सबूत कुरान और सुन्नत में मिलता है वो सब इबादत में है। तो बात क्या वाजे हो गई कि आज़ा की इबादत है। और फिर इसके अंदर ये भी बात जहन में रखिएगा कि ज़्यादा चीज़ें ज़ाहरी अज़ा से करते हैं ना। बस अगर आपसे मैं कहूँ उठे नमाज़ पढ़ें, आप कहते मैंने पढ़ ली है, मैंने दिल में याद कर लिया था, या दूसरी बात है मैंने चुप करके नमाज दिल में दोहरा ली है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़ुबान से बोल दिया, तो क्या हो जाएगी वो नमाज आपकी? नमाज के लिए एक्शन, सल्लु कमा रअईतुमूनी उसल्ली, बात वाज़े हो गई। तो फिर क्या पता चला? नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत की कबूलियत की शराइत क्या है? अल्लाह कौन सी इबादत कबूल करता है और कब नहीं? नंबर 1, अल्लाह की रज़ा की खातिर अंजाम दें कोई भी काम, उम्रा, हज जैसा काम क्यों ना हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। नंबर 2, अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को सुन्नत रसूल के मुताबिक अंजाम दिया जाए, यानी नेकी भी करनी है लेकिन तरीका नबी का बताया हुआ। तीसरी बात, रियाकारी, बदनीयती और नुमाइश से मुकम्मल तौर पर परहेज़ की जाए। क्या इबादत शिर्क बन सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुमले में इसका जवाब है बिल्कुल। इबादत के ये सारे काम जो अभी मैंने बोले भी हैं और कुछ नहीं भी बोले, इबादत के काम अगर गैर अल्लाह के लिए अंजाम दिए जाएं तो ये शिर्क है। बस अल्लाह के लफ्ज़ के आगे अगर गैर लगा लेंगे ना तो सारी बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह के सिवा के लिए की जाए। कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखिए कि कोई अल्लाह के अलावा गैर के आगे जाके सजदा करे तो मुशरिक होगा ना, होगा ना, रुकू करेगा तो मुशरिक होगा ना, जो ज़ाहरी रिचुअल्स हैं। तो फिर अगर अल्लाह के माँ सिवा की बात मानेगा एतात के मानों में, तो क्या फिर ये मुशरिक नहीं होगा? और अल्लाह ने जिसे रोका उसे ना रुके किसी को खुश करने के लिए, तो क्या फिर वो ऐसे होगा अल्लाह के पास? तो सवाल पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर इबादत की हकीकत क्या है? यानी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं और आप अपने आप को इस चीज़ के लिए समझें कि इबादत है कि तभी तो करेंगे। देखिए, एकदम मैं आती और आपको नमाज शुरू करा देती, फिकी बहसों में अपने इतना उलझना है कि अच्छा, औरत की नमाज, मर्द की नमाज, फ़लाँ नमाज़ फ़िक़्हे हनफ़ी की नमाज़ फ़िक़्हे शाफ़ी की नमाज़ फ़िक़्हे मालिकी की नमाज़, आज तक कभी किसी ने उन सारी चीज़ों से पहले इन चीज़ों को समझा कि नमाज़ खुद के, अभी तो हम नमाज़ तक पहुँचे ही नहीं और आज पहुँच भी नहीं पाएंगे, पहली चीज़ ही आज हम नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं यकीन कि हम वहाँ पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? कि अभी हमें नमाज़ की असल रूह ही नहीं पता। तो इबादत क्या है? इबादत रूह की ग़ज़ा है। ये चंद जुमले इबादत की मोहब्बत में बोल के आपको इसकी हकीकत के फिर तीन पॉइंट्स लिखाती हूँ। इबादत रूह की ग़ज़ा है, आज़ादी का रास्ता है, बंदों पर अल्लाह ताला का हक है, अलबूदियत की असल हुदू और तदल्लुल है, यानी अल्लाह के आगे टूट जाए बंदा, झुक जाए। और इबादत जिसका हुक्म दिया गया वो अल्लाह के हजूर आजजी, इनकसारी और इंतहाई मोहब्बत है। पीछे बात हो गई है, अल्लाह ताला से मोहब्बत वाजिब है। सूरह तौबा 24 अगर आप लिखना चाहें लिख लें, आपके पास इधर रेफरेंस नहीं लिखा, आप ख़ुद लिख लें कि अल्लाह से मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह ने 9 चीज़ों की लिस्ट गिनवा दी और कहा कि अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, कि अगर तुम्हें माल, औलाद, बेटे, घर, घरों की मोहब्बत, ये सब कुछ अल्लाह से ज़्यादा प्यारी है अल्लाह के रसूल से, उसके रास्ते के कामों से, तो तैयार हो जाओ फिर उस फैसले के लिए जो अल्लाह सादर करेगा। ठीक है, फिर याद रखिए कि मोहब्बत का आगाज़ लगाव से होता है। पहले आपको किसी से अटैचमेंट होती है, फिर दिल का ताल्लुक पैदा होता है, फिर शौक़ के साथ साथ आपका दिल झुकता जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो मोहब्बत आपके रगो रेशे में घूम जाती है। और मोहब्बत का आखिरी दर्जा जो है वो आप वलूख, अगर आप लफ्ज़ लिखे ना इलाहा लिहा, वही समझ लीजिए कि मोहब्बत का आखिरी दर्जा जो होता है ना वो क्या है, कि आप अपने बस में ही नहीं रहते, वालहियत है। मोहब्बत के सारे स्टेप से गुज़रते गुज़रते बंदा अल्लाह के साथ वालेहाना मोहब्बत करने लगता है, ये इबादत है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस्लाम में इबादत की हकीकत क्या है? तो तीन बातें इसमें आपके इस रेफरेंस लिखे हुए हैं। पहली बात क्या है? इबादत ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, यानी मकसद हयात लिख लीजिए। इंसान इस दुनिया में आया नहीं, लाया गया है, वो खुद पैदा नहीं हुआ, इसे पैदा किया गया। सूरह तूर आयत 35-36 इसकी दलील है, यानी मुराद है कि इंसान खालिक नहीं मखलूक है। और तारीख़ इंसानी में ये दावा आज तक किसी ने नहीं किया कि मैं खालिक के बग़ैर पैदा हुआ हूँ या मैं किसी को पैदा कर सकता हूँ। अल्लाह ही खालिक व मालिक है, वही है। याद कीजिए नमरूद के साथ जो हज़रत इब्राहिम का मुकालमा था तीसरे पारे में, तो किस बात पे फबूहित अल्लाह ज़ी कफ़र का लफ्ज़ आया है, कि जब हज़रत इब्राहिम ने उसको कहा था कि मेरा रब तो सूरज को मशरक़ से लाता है, तू मगरब से ले आ, वो ज़िंदा को मुर्दा कर देता है, मुर्दा को ज़िंदा। तो याद रखिए कि ये एक इंसान की असल सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही इबादत के लिए किया है। दूसरी बात देखिए, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है ना, तो हर इंसान को भी अपने असल की तरफ लौटना है, और लौट जाना हक है। क्या पता चला? दूसरी चीज़ देखिए, क्या समझ आई इबादत की हकीकत, कि हम नमाज में या इबादत में ये दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, लौट जाने का तसव्वुर लिख लीजिए। और इसके रेफरेंस भी आपके पास लिखे हुए हैं, सूरत मोमिनून 116, क़यामा 36, दुहान 40-38 भी है, सूरत स्वात 27-28 भी है। तीसरी चीज़ है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरत ज़ारियात 56। क्या इसमें पता चला? कि इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया गया। असल में जो अल्लाह और बंदों के बीच बंदगी का मुआहदा है ना, वो इबादत है। सूरत आराफ 172-173 में वो वादा अलस्त है जिसका जिक्र आगे भी आएगा। तो क्या पता चला फिर? सारी बात का खुलासा क्या है? कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इसलिए पैदा किया कि हम उससे प्यार करें, उससे डरें, उससे उम्मीद रखें, और उससे ही नहीं, उससे ही रखें। दूसरों को छोड़कर सिर्फ एक रब के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ लीजिए। और ऐसा बंदा जब अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा देने का काम करता है, तो यही खुदा रूही ज़िंदगी है। ये है फिर इन्नस सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तुम राज़ी होते हो तो हो, तुम नाराज़ होते हो नहीं होते, तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने अपने रब को राज़ी करना है। नमाज का वक्त आ गया है, हय्या अलैस सलाम, मुझे जाना है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि बैठ के तुम्हें चाय पानी पिलाता रहूँ, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारे हक हैं, पर जिसने तुम्हारे हक मुझे दिए हैं उसका अपना हक आ गया। मुझे एक बादशाह ने बुला लिया। एक वीडियो देखी थी कि कोई नॉन मुस्लिम मुल्क का एक ग्रुप था, तो वो सऊदी अरब की विजिट पे था, तो जो उस वक्त के फरमा रवा थे वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो सब लोग अभी काफले वाले खड़े हैं और मिल रहे हैं जैसे भी हैं। इतने में अजान की आवाज़ आती है, तो जो सऊदी हुक्मरान है तो उन्होंने एकदम हाथ हिलाया तो वहाँ से हट गए। वो गए तो जो सऊदी नुमाइंदे थे सारे वो भी एक से एक चले गए। आखिर में सिर्फ वो लोग जो वहाँ आए थे वो खड़े थे, तो वो उनको देख रहे थे, तो उनको बताया गया कि नमाज का वक्त आ गया है, तो अब असल बादशाह ने बुला लिया है। कहो कि नो प्रॉब्लम। कितनी देर वो लोग वहाँ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे जब तक कि वो मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ के वापस ना आए। ये है असल में इबादत। और जिसको इसकी आदत पड़ जाए फिर मुझे बताइए इसके बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी और को कुछ कहने की? ये इतने दर्स लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मुसलमानों को। अगर इबादत का सही कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी जो है इसको देखें, और आज जितने बेकार किस्म के लतीफ़े हैं, कहते हैं वो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं जिनके उस करने को कुछ है नहीं, वही मस्जिदों में जाते हैं जो जॉबलेस हैं। ये बात असल समझ आ गई कि अल्लाह ने आपको मुझे खाने पीने के लिए पैदा किया, क्या हमारे मर्द सिर्फ कमाने के लिए आए हैं कि वो कमाते रहें और नमाजें और जुमे भी छोड़ते रहें और हम पकाते रहें और बच्चों को पालते रहें? ये है आज नस्लों के बिगाड़ की वजह। आज हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे पास इबादत के लिए वक्त नहीं। आज कॉन्सेप्ट हो गया है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी फुर्सत कहाँ जनाब, इबादत तो फारिग लोगों का काम है। और वो अम्मा जी हैं ना, वो तहज्जुद में उठ जाती हैं, और वो अब्बा जी हैं वो 5 वक्त में मस्जिदों में जाते हैं। क्या आप में इंसान जानवर है? क्या अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि खाकर मिट्टी में चला जाए? ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। फिर आप बताइए कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल क्यों दी, इरादा क्यों दिया, सलाहियतें क्यों दी? ये आपको मुझे इसलिए दी कि अल्लाह को पहचाने, प्यार का जज्बा इसलिए डाला कि अल्लाह से मोहब्बत करें। तो लिहाजा तो खुजू व खुशू। आपने इस पूरे वीक में, अभी इंशाल्लाह आपको एक वर्कशीट भी दूसरी भी देते हैं, तो आप लोगों को उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमने अपनी इबादत को ट्रैक करना है, क्योंकि असल में हम बिगड़े हुए लोग हैं माजरत के साथ, बहुत ही लाडले हैं, टू मच लाडले हैं। हम वो दो रखते हैं पढ़ के आ जाएं जिसमें एक बार रब ना याद आए, हम कहते हैं शुक्र है नमाज़ पढ़ ली है। चलो ये भी शुक्र है, ये तो वही करेगा ना कि जिसको नमाज की आदत पड़ी हुई है। और हाफिज़ इब्ने कय्यम कहते हैं कि इबादत की असल अल्लाह की मोहब्बत है, और इसकी मोहब्बत और ये कि मोहब्बत तमाम की तमाम इसके लिए है, कोई दूसरा शरीक भी ना हो, और इसी की वजह से मोहब्बत की जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का एक असूल क्या है? अल्लाह की मोहब्बत में हम किसी को शरीक ना करें, इसी को खुदू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्लाह ताला के लिए यानी जो खुदू होता है उसकी बुनियाद क्या है? दिल चाहता है कि मेरे अंदर खुजू खुशू है। खुदू उर्दू में बोलूँगी ना तो खुजू बन जाएगा, हम बोलते हैं खुजू खुशू। खशा क्या होता है? दिल का झुकना। और खदा क्या होता है? जवारेह का, कि पत्थर के बुत बने खड़े हैं नमाज में, ऐसे लगता है कि तीर भी लग जाए तो अपनी जगह से नहीं हिलते। साहबा की नमाजें ऐसी थी ना। तो खुदू की क्या बुनियाद है? दो बुनियादें नोट कर लीजिए। पहली बुनियाद क्या है? कि अल्लाह की तौहीद का इल्म और शऊर, और इसके अस्मा सिफात का इल्म और इदराक हो। यानी वही बात है कि अल्लाह ताला की जो तौहीद है रग और रेशे में रची बसी हो। और दूसरी बुनियाद है अपनी कमज़ोरी और बेबसी और मोहताजी का शऊर। यही शऊर इंसान को फिर अल्लाह ताला के आगे डाल देता है। क्या पता चला कि इस सूप के ऊपर कुरान की कौन सी आयत फिट होती है? एक जुमला मैंने कोई 20ों बार तो बोला ही होगा अपनी ज़िंदगी में, मुझे वो याद आ रहा है असल में इस वक्त, इसलिए पूछ रही हूँ। गुड, अच्छी बात है ये भी कि रबी इन्नी लिमान जल तैरैया मिन फ़कीर में भी यही कॉन्सेप्ट समझ आता है। इसमें यह समझ आ रही है दूसरी बुनियाद के मैं एक फ़कीर हूँ। एक और सूरत फातिहा में हम क्या कहते हैं, उसके आगे क्या कहते हैं? वैया का नस्ताई। जी शाबाश, ये था इसका जवाब। और इसको उर्दू में बोलूँ, अल्लाह अकबर पहली बुनियाद है और इन्नी असगर दूसरी बुनियाद है। ये जो मैंने पहली और दूसरी बुनियाद लिखाई है ना, इसके आगे लिख लें पहली के आगे, सिर्फ याद रखने के लिए अपने लिए। पहली बुनियाद है अल्लाह को अकबर माने, और दूसरी क्या है? खुद को असगर माने।